نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرہ کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. ابھی تک جو چیز ہم نے کی اور جہاں پہ ہم نے چھوڑا وہ تھا کہ اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی سورۃ مدثر کی تھی اور اس کے نزول کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو کام دیے گئے تھے, ایک کیا تھا, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے, آگاہ کیجئے, ان کو ان کے برے انجام کی خبر دیجئے, اور دوسرا کام یہ تھا کہ خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کر لیں. آپ نے اس کام کو احسن درجے سے شروع کیا, اور ہم سب کے لیے بھی یہاں عمل کا نقطہ یہی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ نے اس کو اپنی ذات پہ لگانا اور دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیا, ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ جو بات قرآن پاک میں پڑھتے جائیں گے خود بھی اس پہ عمل کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے. خاص طور پہ اس صورت میں جو مسلمانوں کی تربیت کے خوبصورت نقطے تھے, یہ سارے نقطے جو ہیں ہم سب اپنی زندگی میں بھی لاتے جائیں. اس کے بعد کیا ہوا جس سے آج ہم شروع کریں گے, تبلیغ کا آغاز. جب یہ آیات اتر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن تھا وہ دعوت اور تبلیغ بن گئی. آپ کی قوم اکھڑ تھی, بت پرست تھی. یاد رکھیے دو باتیں, لکھ لیجئے, فائدہ ہوگا. جتنا علم کم ہوگا اتنی اکڑ زیادہ ہوگی. کم پڑھے لکھے لوگ تھے مکہ والے, اور ایسے لوگوں میں ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے, اور وہ ہے باپ دادا کی پرستش, خاندان کی روایات, ہمارے رواج, ہمارے طریقے, ہماری یہ وہ چیزیں. کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ دلیل کو مانتا ہے, اور دلیل ہمیشہ انسان کو جھکاتی ہے. یہ لوگ چونکہ کم پڑھے لکھے تھے اور اپنے غلط طریقوں پہ ہی اکڑے ہوئے تھے, جو کچھ باپ دادا کے طریقوں سے ہوتا آ رہا تھا اسی کو حق سمجھ رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اکڑ اور تکبر بھی تھی. اور جہاں کوئی معاملہ بگڑتا تھا ان کا ایک دوسرے سے تو اس کا فیصلہ تلوار کرتی تھی. یہ ساری چیزیں آپ کو آج بھی اس جاہل معاشرے میں بڑی عام دکھیں گی کہ جہاں پہ علم کی کثرت نہ ہو بات بات پہ لڑنا اور جھگڑنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ شروع میں تبلیغ خاموشی اور رازداری سے کی جائے. یہ نقطہ آپ کے اور میرے لیے بہت ہی قابل توجہ ہے کہ جب بھی کوئی دعوت, جب بھی سچا دین کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں آتا ہے تو اس وقت لوگوں کو بڑے بڑے فلائر چھپا کے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے بات کرنے سے پہلے ون آن ون بیس پر اپنا خیال اپنے قریبیوں تک رکھنا چاہیے. اور کس کے پاس اللہ کے نبی بات کرتے تھے؟ جس کے دل میں خیر دیکھتے تھے. آپ کہہ لیجئے کہ اب یہاں سے ایک قسم کا مکی دور کا آغاز ہے نا, تو مکی دور تین درجوں میں بانٹنے ہیں, جس میں سے اب ہم مکی دور کا پہلا دور پڑھ رہے ہیں, اور یہ تھا ون آن ون بیس پر تبلیغ کا دور. ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پتہ چلی, سب سے پہلے آپ نے اپنی بات گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی. تو اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے اوپر پہلے پہل ایمان لانے والے لوگ کون تھے, تو سب سے پہلے اس میں نام ایک عورت کا ہے. نوٹ کیجئے, اس دین کی پہلی مصدقہ, تصدیق کرنے والی ایک عورت تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے, ان کے پاس تو جبرائیل آئے تھے, ان کو تو اللہ نے سینہ کھول کے ان کا حکمت ڈال دی, لیکن حضرت خدیجہ آپ کی بیوی بھی تھی, آپ کے بلند اور اعلیٰ اخلاق کو پہلے سے جانتی تھی, اور ان کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کی زبان سے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ آخری نبی آنے والے ہیں, لہٰذا اور کچھ معجزات بھی دیکھ چکی تھی جس سے اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کی جھلکیاں ملتی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہی آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ کو جب دعوت دی تو انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ سب باتیں کہہ دیں. بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ سورۃ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہے یہ حضرت خدیجہ کے سامنے اتری تھی. क्या शान है हज़रत खदीजा की। अल्लाह ने उनको जिस काम के लिए चुना वाकई वो काम करके चली गई। तो कल आपसे कोई पूछे कि हज़रत खदीजा के फौरी आप पर ईमान लाने की क्या वजूहत थी, तो ये सारे नुक्ते आप बता सकते हैं। सबसे पहले अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार। याद रखिए मैं और आप अमल के लिए सीरा सुन रहे हैं ना। अगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरी इस बात को जो मैंने यहाँ सुनी या मैंने जो अच्छी बात आपको कही अगर आप उसको माने, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना इखलाक और अपना किरदार अच्छा करना पड़ेगा। हमारे मामलात जब हमारे इर्द गिर्द वालों के साथ अच्छे होते हैं ना, तो फिर हम लोग उनको अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। और घर में लड़ाई का माहौल बना रहे हर वक्त घर में तू तू मैं तक तू तू तकार ही होती रहो, और सबसे बुरी बात यह है कि वो भी दीन के नाम पर ही हो। अभी से लिख लें ये बात आप दिल की तख्तियों पे कि आप जिस मुआशरे से निकल कर इस कुरान के और हदीस के सीखने के लिए आए हैं ना, ये कोई आइडियल सोसाइटी नहीं है इस वक्त, या वो चीज़ें आप नहीं लागू कर सकते जो एक आइडियल मुसलमान माहौल में होती हैं। इसके लिए आपको सब्र, हिकमत, अल्लाह से ताल्लुक़ की कसरत से ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बात यहाँ सुने अगर उसमें कोई बात आपको अपने घर वालों, बाप, शौहर, भाई, बेटे, बीवी किसी में दिखे, तो एकदम जाके उनके ऊपर ना तो आपने हमला करना है, और दूसरी बात याद रखे आज से ही लिख लें, मैंने अपने घर में दीन को बहस का ज़रिया नहीं बनाना। नए लोगों के साथ, वो बिल्कुल नए हैं, आप इस क्लासरूम में बैठ रही हैं, आप सीख रही हैं, आप पहले ख़ुद अपने ऊपर अमल करें, आप अपने आप को नरम करें, पिघलाएं। आप देखिए कि जब गोश्त गल जाता है ना, तो फिर जिसको भी पेश करें लोग उसको खुशी से खा लेते हैं। और कच्चा गोश्त सख्त बोटी किसी के भी आगे रखेंगे ना, सिर्फ चखेगा और थूक देगा, क्योंकि उसके दांत में दर्द हो सकता है, उसके जबड़े में दर्द हो सकता है, कुछ भी मसला आ सकता है। पहले खुद को गलाएं। हमारा दीन जो है ना, ये अपनी ज़ात के तज़किये और तरबियत से शुरू होता है। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर दीनदार साथियों से हो जाती है, क्योंकि शुरू का एक्साइटमेंट बहुत होता है, ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। जैसे आप कभी डॉक्टर की दुकान पे जाके बैठे ना, तो वहाँ बीमारियों के अक्सर एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, कैंसर के अमराज, उसकी वजूहत, हार्ट अटैक की। कभी आप आजमा के देखें, वैसे तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखे ऐसी जगहों पे जाने से, कभी किसी के साथ भी गए हैं ना, तो आप पढ़ के देखें, आप जूं ही दिल के अमराज के साइन और उसकी वजूहत और सिम्टम्स पढ़ेंगे ना, तो एक एक करके आपको लगेगा ये मेरे अंदर है, ये तो मुझे भी है, सांस तो मुझे भी चढ़ता है, फूलता मेरा भी है, हाँ ये भी है, वो भी है। फिर अगली जितने पढ़ती जाएंगी ना कुछ आप अपने अंदर उसका असर पाएंगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप कुरान पढ़ने बैठेंगे ना, और आप सीरत सुन रहे हैं और नबी की ज़िंदगी अब आपके सामने दिख रही है, आप सब जो नए साथी हैं ना कुरान की तरफ आने वाले, उन सब के लिए इस वक्त ये सीरत जो है ना आपका मुस्तकबिल है। एक नबी की ज़िंदगी जो होती है ना, वो उम्मतियों के लिए रोल मॉडल होती है। आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, जैसी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप देखेंगे कि अगर नबी का मिशन तबलीग था, तो हमारा मिशन भी तबलीग है। अगर नबी घरदारी को इबादत समझ के चलाते थे, तो हमने भी इसको इबादतदारी समझना है। और अगर नबी को हम देखें कि बाज़ारों में घूमते खाते पीते और नमाजें भी कज़ा करते हुए, और रात को चार टकरे मार के बिस्तर पे सोते हुए, और दोपहर पे उठ के फजर पढ़ते देखें, हम भी शौक़ से यही करेंगे, क्योंकि रोल मॉडल ही है। कुरान के साथ सीरत एक ऐसा खूबसूरत ढांचा है कि जो आपकी ज़िंदगी को निखार देता है। मसलन जैसे कि अगर आपने घर देखे हो बनते हुए, ये घर ही जैसे ये बिल्डिंग देख लें, तो आपने देखा होगा कि घर बनते हुए पहले ढांचा बनता है, फिर ऊपर ये पेपर शीट लगे, कागज़ लगे, प्लास्टर हुआ। अगर इसके बीच में से कोई ढांचा निकाल दे, जो लकड़ी का स्केल्टन होता है या लोहे के कुछ चीज़ें बांधते हैं, तो ये सारी बिल्डिंग मलबे का एक ढेर होगी। बिल्कुल आप सोच लें कि सीरत नबी सल्लम की ज़िंदगी, सुन्नत हमारे लिए दीन का एक ढांचा है, उसके ऊपर ये जो रंग, फूल, बूटे, खूबसूरती है, ये सीरत के अमल की वजह से है। जब हम अल्लाह के नबी के तरीक़ों पे अमल करते जाएंगे ना, ज़िंदगी के सब गम दूर होते जाएंगे। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता, मैं अपने शऊर से कह सकती हूँ आपको, कि जब लोगों के दुख और गम और उनकी बेचैनियाँ और उनकी परेशानियाँ देखकर मेरे दिल से हूक ना उठती हो कि ये तो इस वक्त इस मसले का शिकार है, इनके तो गम है, इनके तो रिश्ते नहीं हो रहे, इनके तो मियाँ ठीक नहीं, इनके तो बच्चे ठीक नहीं, इनको तो बीमारियां लगी हैं, लेकिन इनको वजह नहीं पता। वजह हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कोई आए जल्दी से कोई जंतर मंतर करके हमारा इलाज कर दे, कोई वजीफा बता दे। कोई वजीफा नहीं है आज या जिंदगी के किसी दौर में, खास तौर पे मुसलमान, काफिरों की बात नहीं है। अल्लाह का कानून काफिरों और मुसलमानों के लिए बिल्कुल फर्क है, दो डिफरेंट सोच है। काफिर तो अल्लाह का है ही नहीं, अल्लाह उसकी तो परवाह ही नहीं करता, लेकिन मुसलमान के लिए अल्लाह का कानून क्या है कि जितनी उसकी ज़िंदगी नबी सल्लम की ज़िंदगी से मुताबिक, उसका लाइफस्टाइल, उसका मिशन, उसका विजन, उसका काम का तरीका और उसके अंदर वो इखलाक और किरदार नबी वाला होगा, उसकी ज़िंदगी ला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून होगी। आप पढ़ेंगे सूरत यूनुस में अल्लाह खुशखबरियाँ देता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून, कि अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक लोग वो होते हैं जिनको कोई गम और खौफ नहीं होता, जो तकवा की ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। तो आज हम इंसान यकीन कीजिए कि बेगार की काट रहे हैं। आज हमारे रिश्तेदार, हम खुद उसी सोसाइटी में रहते हुए अगर आज कुरान ने आंखें खोली हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो सीरत पढ़ते हुए साथ साथ ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी भी ज़िंदगी में वही सुकून आ जाए, वही खुशी आ जाए जो नबी की ज़िंदगी में थी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ख़ुद को पहले सही करना है, आप सब्र कीजिए। कल तक भी तो वो नई नमाज़ पढ़ते थे ना, आज आपको पता चल गया नमाज़ पढ़नी चाहिए, या अगर आपको आज उसकी शिद्दत पता चल गई है, तो दुआ बंदे से बात करने से पहले रब से करें। किसी बंदे से आपने कुछ भी कहना है, रात को पहले खुद उठें और रात को, आज के आज रात की इबादत में मैंने अपने बाप के लिए बात करनी है। एक दिन दरवाज़ा खटखटाएं, दूसरे दिन खटखटाएं, आप देखिएगा कि दरवाज़े खुलते हैं। आता है सदाओं का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, क्या क्या शायर बातें करते हैं, ये होता है, लेकिन सब्र इसमें पहले हमें जमना होता है। चूँकि हज़रत खदीजा अल्लाह के नबी का बेहतरीन किरदार देख चुकी थी, जूँ ही आपने हक़ पेश किया उनको कोई मुश्किल नहीं पेश आई, और ये सारे असबाब भी जमा हो गए जो आपके साथ शेयर किए। तो गोया के हम सब के लिए भी इस वक्त एक तरतीब है, दीन की बात जो यहाँ सुनेंगे सबसे पहले इसके हकदार आपके घर वाले हैं, और आपके मुंह से सुनना हो सकता है उनको नागवार गुजरे, क्योंकि हमारी माजी की हिस्ट्री भी तो उनके सामने ही होती है। फिर ताने मिलेंगे, अच्छा जी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए जाने लगी, हमें तबलीग करने लग गई 900 चूहे खा के। तो आज से दिल में नियत कर लें, अपने घर की जिस बहन को, साथी को, माँ को ला के साथ बिठा सकती हैं बिठा लें। यहाँ भी आप देखेंगे और बहुत जगह और भी आप देखेंगे, जिस घर से एक से ज़्यादा लोग आए ना वो जम गए। फैमिली बेस पे जब बंदा किसी चीज़ को सुनता है ना, तो फिर गुफ्तगू का रुख ही वो हो जाता है। आपने भी सुना, आपकी बहन ने भी यहाँ बैठ के सुना, शाम को अगर मुलाकात होगी तो यही बातें होंगी, रात को किसी शादी में मिलेंगे तो यही बातें होंगी, तो इस तरह आप मजबूत होती जाएंगी। तो सब अपने लिए गोल बनाएं, और किसके ऊपर पहले काम करना है, नरम जिनका दिल है, जो भी कुरान से इंक्लाइंड है, रोना पड़े रो ले, तड़पना पड़े तोड़ तड़प लें, माओ से कि हम खुद काम कर लेंगे, साथ चले, पीछे बैठे रहें, कुछ ना करें, घर जाएंगे मिल के, आप रोटी पकाना मैं सालन बनाऊंगी, आप ये करना वो हम कर लेंगे, आप आके बस बैठ जाओ मेरे, कुछ ना पढ़ो, कुछ वो कहेंगी लिखना नहीं आता पढ़ना नहीं आता, कहने इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, पढ़ना लिखना तो एक आखिरी बात है, असल सुनने की बात है। तो आप फील करेंगे कि 1-2 हफ्ते में आपको अपने घर में वो फीलिंग आएगी जो आपको अपनी दोस्तों के साथ बैठ के कभी आती है। फ्रेंडशिप सर्कल, बेस्ट फ्रेंडशिप दीन की बुनियाद पे होती है। अल्लाह के नबी ने हज़रत खदीजा को बात पेश की, वो मान गई। उसके बाद दूसरी खूबसूरत शख्सियत जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने इस्लाम पेश किया, वो थे आपके जिगरी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा पहले से भी था। आपने जाके जब उनको बात बताई तो आपने फ़ौरन मान लिया। अबू बकर सिद्दीक एक सरदार भी थे, दौलतमंद भी थे, सोसाइटी की बड़ी खूबसूरत मानी हुई शख्सियत भी थे। इसके बावजूद देखिए कि उनके दिल में हक बात की कितनी तलब थी। अल्लाह के नबी ने इनके लिए एक क्रेडिट दिया, इनको फरमाया मैंने जिसको भी दीन की दावत पेश की उसको थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ उसमें सवाल जवाब उठे दिल में, क्या ये वो क्यों करा, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, कि जूँ ही मैंने उनको दीन की दावत पेश की उन्होंने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के उसको मान लिया। तो गोया कि फिर मेरे और आपके लिए अब अमल का नुक्ता साइड पे लिखते जाए कि सेकंड टारगेट हमारा हमारी दोस्तें हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स के साथ अगर आपका दीन मिल गया, यकीन करें वो आपके क़यामत तक के साथी बन जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि एक शहर में गए तो एक दोस्ते बनी, दूसरे में गए उनको भूल के दूसरी बना ली। दीन की बुनियाद जब दोस्ती में शामिल हो जाती है ना, तो वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि फिर बात बात पे आप रूठते नहीं हैं, झगड़े नहीं हैं कि आप तो मुझे बनाती नहीं, मनाती नहीं, आपने मुझे छोड़ दिया। अक्सर देखिए दुनियादार दोस्तें आधा वक्त शिकवे करती दिखती हैं, ज़रा ना पूछो किसी मौके पे तो वो नाराज़ हो गई। तो जब दुनिया के दोस्तों को दीन में मिला लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे। तीसरी शख्सियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। पीछे जिक्र हुआ कि अबू तालिब के पास बच्चे बहुत थे लेकिन पैसे नहीं थे, कम थे, उनको नहीं किसी ने सिखाया है कि दो बच्चे खुशहाल घराना, फैमिली प्लानिंग कर लो और अपने बच्चे कम रखो क्योंकि खिला नहीं सकते। उस दौर में लोग इतने अक्लमंद नहीं थे, असल में तो बेवकूफ़ी थी, बच्चे बहुत थे। तो नबी सल्लम ने अली को अपनी जेरे किफालत ले लिया, उनके खाने का पीने का इंतज़ाम करते। इसमें भी एक अमल की बात हमारे लिए है कि अगर किसी रिश्तेदार ने ज़िंदगी में किसी मोड़ पे हमारे ऊपर कोई एहसान किया हो, जैसे अबू तालिब का एहसान था अल्लाह के नबी पे कि उन्होंने पाला उनको, तो जब मौका मिले तो आप उस एहसान को ज़रूर उतारें। और याद रखिए, जो मोहसिनों के साथ अच्छा मामला नहीं करता ना, वो बहुत बड़ा खाइन है। जिस बंदे की वजह से आपको कोई खैर मिले, कोई नेमत मिले, फिर आप उसकी को बुराई करें या उसकी नाफरमानी करें तो यह आपकी एक किस्म की बदकिस्मती की अलामत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो मुसलमान हो गए, और कहते हैं कि इनकी उम्र अभी 10 साल थी, और ये उम्र इतनी खूबसूरत है। आज भी मैं और आप इस पे अब थर्ड टारगेट अपना नोट करते हैं, हमें दीन की दावत देनी है, किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है तो अपने घर के यंग बच्चों से शुरू करें। अभी इनके दिमाग इतने ख़राब नहीं हुए होते, सोसाइटी का इतना इनके ऊपर असर नहीं होता, आप कोई देख रहे होते हैं बाहर, अभी नहीं देखते, जो आप करेंगे वो वही करेंगे। तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली मान लाए, आप अपने बच्चों पे काम करें। बेटा मैं तो ये जाके सुन रही हूँ, बेटा आपने आज स्कूल में क्या सुना, अच्छा मैं आपको सुनाती हूँ मैं अपने स्कूल में क्या सुन के आई हूँ। इस तरह से आप बात करें कि आपके 10, 11, 12 साल के बच्चे आपके दोस्त बने। इससे छोटे जो होते हैं ना उनका माइंड ज़रा खिलंड रहा होता है, इससे जो बड़े होते हैं ना वो ज़रा ऊपर निकल चुके होते हैं। तो 10 साल से ऊपर के बच्चों से दोस्ती करें, मत उनके ऊपर तनकीद करें। आपकी ज़ुबानें सख्त नहीं होनी चाहिए अब यहाँ आने के बाद, कि बच्चों को सारा वक्त डांटते ही रहें डांटते ही रहें। नहीं डांटना, प्यार करना है, बताना है कि बेटा देखो हज़रत अली 10 साल की उम्र में थे तो वो मुसलमान हो गए, हज़रत जाफ़िर जो दूसरे भाई थे अली के वो हज़रत अब्बास की किफ़ालत में थे। यानी इस तरह देखिए, उस दौर में एक ख़ानदानी सिस्टम होता था कि अगर एक के घर में बच्चे ज़्यादा है तो दूसरे उसको पाल देते थे, क्योंकि उस वक़्त आइसोलेशन जो थी वो इस तरह की नहीं थी जो आज है। आज तो अल्लाह की बना ऐसी सिंगल यूनिट फैमिलीज़ का रिवाज बनता जा रहा है कि सगे भाई के घर जाने से पहले भी 10 दफ़ा पूछना और इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें वो खूबसूरती और वो मोहब्बत कम दिखती है जो कि पहले दौर में दिखती थी। तो बहरहाल हज़रत अली के बाद चौथी शख्सियत जो इस्लाम में दाखिल हुई ये ज़ैद बिन हारिसा थे, नबी सल्लम के ग़ुलाम, हज़रत खतीजा के ये ग़ुलाम थे। असल में ये ख़ानदानी ग़ुलाम नहीं थे, जैसे कुछ बच्चे अगवा हो जाते हैं ना, किडनेप्ड किड थे। मक्का में आए, हज़रत खदीजा ने इनको ख़रीद लिया, हकीम बिन हिसाम ने पहले लिया उनसे, उन्होंने अपनी पुप्पी को पेश किया, हज़रत खदीजा को मिल गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा की शादी हुई तो तोहफे के तौर पर उन्होंने अल्लाह के नबी को पेश किए। उस दौर में ग़ुलाम तोहफ़ों के तौर पे ऐसे ही पेश किए जाते थे जैसे आज किसी को आप ग्राइंडिंग मशीन दे देते हैं, काम में अपने मददगार बनाइए, तो ग़ुलामों से फिर घर के काम कराए जाते थे। जब अल्लाह के नबी को ये मिले तो आपने इनसे कहा कि देखो आप को मैं ग़ुलाम नहीं बनाता, आप मेरे बेटे हो। यानी आपका एहसान कितना था कि आपने उनको ग़ुलाम बनाने की बजाय क्या कहा कि आप मेरे बेटे हो। ये मुंह बातें चलती रहीं। कुछ अरसा गुज़रा, इनके ख़ानदान को जो दूसरे मुल्क से था उसको पता चल गया कि हमारा अगवा किया हुआ बच्चा जो है वो इस वक्त मक्का में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स के पास है। चचा और उनके कुछ रिश्तेदार आए, इनके बाप भी आए, देखा बेटे को, बाप ने देखा इतने साल के बिछड़े हुए थे, पहचान गए, कहने लगे कि अब इस तरह ये हमारा बच्चा आप हमें दे दें। अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, जो जैद चाहेंगे वही होगा। कहा जैद आप बाप के साथ जाना चाहते हैं चले जाइए, आप मेरे साथ रहना चाहते हैं आपका इख्तियार है। तो आपको पता कि उस मौके पर जैद ने बाप और चचा को क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितनी मोहब्बत और जितना अच्छा अखलाक और किरदार मुझे इस शख्स का दिखता है तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। लिहाजा फिर उन्होंने कहा ठीक है, जब हमारा बच्चा आपके साथ खुश है, आपका मामला अच्छा है, तो आप इसकी तरबियत करें। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं जाना, तो फिर उसके बाद से फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि आज से ज़ैद मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस होगा और मैं इसका वारिस होऊंगा। यानी गोया कि एक मुंह बोला बेटा बनाने की जो उस दौर की रस्म थी उसको कर दिया। उसके बाद इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा। चचा भी खुश हो गए, बाप भी खुश हो गए कि चलो हमारे बच्चे को कोई कमी तो नहीं है। लेकिन बाद में फिर सूरत अल अहज़ाब में जाके आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जब मुंह बोले बेटे की रस्म टूटी सन 5 हिजरी में जाके, जब हज़रत ज़ैनब के साथ आपका निकाह हुआ था, तो उस वक़्त फिर ज़ैद बिन मोहम्मद को दोबारा ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। और इस तरह से आप देखिए कि 4 गवाह, बीवी, घर का पाला हुआ बच्चा, दोस्त और ग़ुलाम, आज भी ये 4 लोग मेयार बना लें आप अपने ही लिए। अगर आपके आला अखलाक और आपके किरदार की गवाही इन 4 रिश्तों से मिल जाए, तो आप समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हो रही हैं। बद अखलाकी की इंतहा लोगों की बीवी के साथ होती है, चाहे बाहर वालों के साथ बहुत मीठी बातें करते हों। और यही रिवाज बाज़ बीवियों का भी है, सारे लोगों के साथ वो मीठी ज़ुबान से बात करती हैं, शौहर आता है तो धाड़ने वाला अंदाज़ होता है। इसी तरह आप देखिए एक बंदे का असल पता चलता है उसके मुलाजमों से। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हमारे नबी कितने खूबसूरत नबी थे कि करीब के लोगों ने उनको ये नहीं कहा अच्छा जी तुम हमें बातें कह रहे हो। चूँकि वो पीछे 40 साल की हिस्ट्री है ना आपका किरदार था, तो लिहाजा ये 4 मुसलमान हो गए। और कहते हैं ये चारों उसी दिन ईमान ले आए जिस दिन सूरत मुद्दसर की इब्तदाई चंद आयतें नाजिल हुई थी। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मिशन था। अब आप देखिए अल्लाह के नबी 1 से 5 हो गए, ये है दीन का फैलाव। यहाँ से आप समझ भी लें बल्कि अपने लिए कुछ चीज़ें, पहले 1 थे फिर 5 हो गए। अब इन 5 में से भी अबू बकर सिद्दीक आपके साथ खड़े हो गए। कह नबी कुम फानजिर का हुक्म है तो आपको, वाहिद है, अमर है। कह नबी उठिए, लेकिन मैं भी आपके साथ ये काम करूँगा जिस हद तक कर सकूँ। और अबू बकर ने आपको उस वक्त में साथ दिया कि जब अभी किसी के कानों कान खबर नहीं थी कि इस्लाम क्या है। और अबू बकर सिद्दीक खुद भी पाक दामन थे, पसंदीदा अफरादों में से थे, लोग आपको लाइक करते थे, नरम मिजाज थे, शरीफ थे, दरिया दिल, खुले दिल के मालिक थे और बड़े मोजिज़ थे। अरब के लोग नसब और वाक़ियात को बहुत अहमियत देते थे कि कौन किसका बेटा, किसके घर पैदा हुआ, और अबू बकर सिद्दीक उसमें बहुत ज़्यादा माहिर थे। किसी ने भी पता करना होता था ना कि कौन किसका बेटा था, कब पैदा हुआ, किसका था, तो लोग अबू बकर सिद्दीक से पूछते थे और आप उनको फौरन बताते। जैसे हमारे ख़ानदानों में भी कोई ना कोई एक शख्सियत ऐसी ज़रूर होती है कि जो सारे रिश्तेदारियाँ आपको खोल के सुनाती है, फलां उधर है, उसका ये हाल है, ये हुए। इसी तरह इनके किरदार में सखावत बहुत थी, जूद व सुखा, जूद कहते हैं जवाद के लफ्ज़ को, आपने उर्दू में भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा जेनरस, अल्लाह के रास्ते में देने वाला। याद रखिए लोग जिस बंदे को बहुत पसंद करते हैं ना, उसमें उस बंदे की नमाज़ें नहीं हैं, उसके दर्स देना भी इतने नहीं है, उसके आपको हर वक़्त डांटता या नसीहत करना भी नहीं। एक चीज़ जिसको इंसान की फितरत बहुत पसंद करती है, वो क्या है कि आप देने वाले बन जाएं। आप अपने जिन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं ना किसी भी रंग में दीन पे, आज से आप नियत कर लें अपने पैसे बचाएं, 5 करोड़ रोज़ के बचा लें, 4 बचा लें, 2 महीने बाद 100 करोड़ जमा करके ना, तो कोई ये खूबसूरत और बामकसद तोहफा, गिफ्ट, कोई किताब, कोई कैसेट, कोई सीडी, कोई और ऐसी नहीं चीज़ देनी कि जो बेकार अगला ला के रख दे। आप अपनी एक एक दोस्त और रिश्तेदार को गिफ्ट में देना शुरू कर दें, आप फील करेंगे कि आपके ये तोहफे जो है ना दूसरों का दिल नरम करेंगे। तो देने वाले बनेंगे ना तो अल्लाह ताला आपसे काम भी बहुत कराएगा। अबू बकर सिद्दीक की नेकियों पे बात करने लग जाऊँ तो फिर तो सीरत नहीं रहेगी, ये अबू बकर की सीरत बन जाएगी। लेकिन हकीकत है कि अबू बकर से अल्लाह ने जो दीन के इतने काम करवाए, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इनका दिल बड़ा खुला था। ये देते हुए सोचते नहीं थे कि मुझे इसके जवाब में क्या मिल रहा है। फिर इल्म भी बहुत था, फजल बहुत है इनके ऊपर, लेन देन और मेल जोल की खूबियाँ बहुत थी इनके अंदर, हर वक्त इनके पास लोग रहते थे। यानी जिस बंदे में इस किस्म की खूबियाँ होंगी लोग उसके पास रहेंगे। कोई भी किसी को कोई बात बताना चाहे भरोसे के लायक, किसी को कोई बात कहनी करनी हो, तो वो अबू बकर सिद्दीक से करते थे। और अबू बकर जब देखते कि लोग अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए मेरे पास आते हैं ना, तो उनकी ज़रूरत भी पूरी करते और साथ ही उसको इस्लाम की दावत दे देते। और इसी तरह से आपको पता है कि एक पूरा गिरोह तैयार हो गया। यहाँ से हमें भी काम करने का तरीका मिल रहा है कि आप अपने साथ मिलाएं दूसरों को और फिर मिल के काम करें। जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना कि एक अकेला 2 11, वो बात बिल्कुल सच है। आप अकेले कोई काम करते हैं ना तो गिल्ट में ही रहते हैं कि हाय है मैं अकेली हूँ, लेकिन जब आपके साथ कुछ और लोग मिल जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से काम हो जाता है। बहरहाल अब वही बात है कि तन्हा चले थे, लोग मिलते रहे और काफिला बन गया। उतर कर हिरा से सुए हरम आया एक शख्स, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक की पुकारे लगाता हुआ, और कुछ ही महीनों में एक ग्रोह तैयार हो गया। इनमें उस्मान बिन अफ्फान, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, उस्मान जो हैं ये नबी सल्लम के दोहरे दामाद बने बाद में, ज़ुबैर बिन अवाम जो हैं ये नबी सल्लम के चचा थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, तलहा बिन उबैदुल्ला वगैरह, ये सब आ गए और कहते हैं कि ये सब अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हो की तबलीग से मुतासिर हुए, इस्लाम की बात हुई। जब देखा कि दिल नरम है, इनको लेकर अल्लाह के नबी के पास आए तो सब ने इस्लाम कबूल किया। और अगर आपने इन नामों को गौर से कभी पहले भी सुना हो तो इन्हीं में अशरा मुबशरा भी हैं, वो 10 सहाबी जिनके लिए दुनिया में जन्नत की खुशखबरी है। तो याद रखिए, अव्वल दिन के लोग जो किसी दावत के आगाज़ में दीन की दावत कबूल करते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, वही असाबिकून अलव्वलून में दाखिल होते हैं। आज आपको पता है कि अल्लाह के नबी की जब दुनिया से रुखसती का वक्त आया था तो लाखों के में सहाबे कराम थे, लेकिन नाम कितनों के याद है? टोटल 100 125 सहाबा के नाम आते हैं किताबों में, और उसमें से भी 10 अशरा मुबशरा, 4 खुलफ़ाए राशिदीन, 1400 असहाबे बैत रिजवान हैं, कोई 313 बदरी सहाबी हैं, कोई तबूक के सफ़र पे जाने वाले हैं। यानी जिन्होंने कुछ किया वक्त ने उनको याद रखा, ये है असल बात। जब भी आप दीन की दावत किसी मुआशरे में नई नई देखें तो अपना हिस्सा डाल दें। जैसे वो दौर था ना, जिसमें आपने पीछे थोड़े से हालात सुने कि क्या मक्का का दौर था और किस तरह की बुराइयों का शिकार थे, यहाँ डिटेल से नहीं बताया मैंने। आप रहीकुम मख्तूम का बिल्कुल पहला टॉपिक सुने, अरब के हालात, 10 किस्म का जिना आम था वहाँ, जिसको कहते वो निकाह थे, शादी थे, जिसमें लिविंग टुगेदर भी है। एक एक औरत के पास 10 10 मर्द आते थे। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती थी ये पता ही नहीं चलता था किसका बच्चा इसके पेट में, फिर वो कैफा शनासों को बुलाती, कोई तीर फेंकता, इस कदीर बेहयाई थी। सूद आम था, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। आज आप देख लें तो उससे कुछ बहुत मुख्तलिफ हालात नहीं दिखेंगे आपको। आज का दौर बिल्कुल वही दौर है जो अल्लाह के नबी का दौर था। इस वक्त अगर अल्लाह आपको सच्चे दीन की दावत दे रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आप भी नशर मुबशर में दाखिल हो सकती हैं इंशाल्लाह। एक दीन वो होता है जो वक्त का रिवाज चल ही रहा होता है, लोग करते हैं वो काम, वो सारे कर रहे होते हैं, आपको करना मुश्किल नहीं। कोई बड़ा दिन आया तो बड़ा दिन मना लिया, रात बड़ी आई तो बड़ी रात मना ली, रबीउल अव्वल आया तो मिलाद करा लिया, रमज़ान आया तो इफ्तारियां करा ली, हज का मौका आया तो लोगों को मिलाकर एक दावत खिला दी। ये दिन बहुत आसान है, कभी शब बारात मना ली, कभी मेराज की रात मना ली, लेकिन मुश्किल वो दिन होता है जिसमें ये मिशन का दीन है। आज आप अपनी आंखों से ये पढ़ के और सुन के कानों से देख रहे हैं कि नबी की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी, किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन फैला। आज भी जब इस किस्म की बातें पेश होंगी ना तो लोगों को ये अजनबी दीन लगेगा।